हम आज ट्रस्टी बनने की विधि के बारे में बात कर रहे थे। पिछला रिकॉर्डिंग अनायास ही समाप्त होने के कारण बाकी के पॉइंट्स अभी हम इस रिकॉर्डिंग में कंटिन्यू करेंगे। तो दो बातों की हमने बात की थी पिछले रिकॉर्डिंग में, एक था मेहमान बनना और दूसरा था घर, आध्यात्म और लौकिक जीवन दोनों को एकत्र करके चलना, घर को ही शुद्ध पवित्र बनाने की बात की थी। ये दोनों बातें ट्रस्टी बनने के लिए एक रास्ता है। तीसरी बात जो अभी हम करने जा रहे हैं, ट्रस्टी बनने की तीसरी विधि, वो विधि ये है कि जो भी हमारे धन के जो कर्म है वो हम डायरेक्टली बाबा के परमिशन के बगैर न करें। ये हमने ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी देखा है कि सबसे पहले उन्होंने अपना सारा धन शिव बाबा को सौंप दिया था। क्यों? क्योंकि धन से जो कर्म होते हैं लौकिक में, वो सारे कर्म ही आपको पीछे की तरफ ले जाते हैं, आपको अनायास ही, आपके बगैर जाने ही वो आपके कर्मातीत के स्टेज को पीछे कर सकते हैं। यदि बाबा की बहुत सारी बातें आप फॉलो कर रहे हैं पर धन यदि आपने बाबा को सरेंडर नहीं किया है, या धन आप बाबा के हिसाब से नहीं चला रहे हैं, तो धन अपनी मर्जी से चलाने से जो भी आपके कर्म बनते हैं धन से, किसी को बाहर गिफ्ट देना या शादियों में जाना या जो भी लौकिक चीजें हैं, बिजनेस संभालना है या किसी को आप बार बार धन से मदद करते हैं किसी बीमारी के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो ये सब बातों की वजह से आपके कर्म अटक जाते हैं और फिर आप चाहो तो भी आगे कर्मातीत के स्टेज के लिए पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये धन का पेपर सबसे बड़ा पेपर है। इसलिए धन के जो सारे कर्म हैं, भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है स्पेशली, क्योंकि जो हमारा भारतीय समाज का माहौल है, अधिकतर भाई लोग धन अपने पास वही रखते हैं और वही घर के लौकिक घर की सारी खर्चे वह चलाते हैं। आजकल बहुत सारी माताएं भी साथ साथ में कंट्रीब्यूशन करती हैं, पर जो भी हो, भाई हो या माँ हो, हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि धन की सारी चीजें पहले बाबा को सरेंडर कर देनी है। तो आप बाबा को एक लिस्ट बना के बाबा को सुपुर्द करें कि इतने सारे बैंक अकाउंट्स हैं, उसमें पैसा क्या है, आप कौन सी चीज में कैसा धन लगा रहे हैं, किसको, यहाँ तक भी हम जैसे अपने लौकिक जीवन में एक मेथड फॉलो करते हैं और वो है कि किसी को छोटा सा यदि किसी को तोहफा भी देना है, जैसे किसी ने आपको मदद की घर घर की साफ सफाई करने में, तो वो उनको 100 रुपए भी आपको हाथ में पकड़ाने हो तो वो भी हम बाबा से पूछ कर ही करते हैं, या बाबा को पहले कह देते हैं कि आप जैसे चाहे वैसे ड्रामा में हो। तो कई बार बाबा की टचिंग हमें डायरेक्टली न भी आए, पर यदि हमने बाबा को कह दिया है और उन्हें इनवाइट किया है अपने साथ काम करने का, तो ड्रामा उस हिसाब से चलती है। तो छोटी सी छोटी बात भी धन की हो, ये आपके कई बार देने के संस्कार की वजह से आप कई बार जकड़े जाते हो उस कर्म में। इसलिए बाबा को हमेशा धन का सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर दे दें। ऐसे समझें कि बाबा आपके स्पिरिचुअल इनकम टैक्स के मैनेजर है, या कोई भी बात ऐसे लौकिक तरीके से समझ लें, पर बाबा से ऑडिट करवाए बिना कोई भी धन की बात न करें, क्योंकि परमात्मा सारे विश्व का यज्ञ, इस यज्ञ द्वारा सारे विश्व का चलन कर रहे हैं, वो सारे विश्व को चला रहे हैं। तो इस वक्त यदि आप अपना धन उनसे कह के सुपुर्द करके यदि आप चलाएं, तो ये बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आगे आप कोई कर्म में धन की वजह से फंसे नहीं। और कोई भी ऐसे लौकिक में जो बहुत धन लेने देने के लिए आपको मजबूर कर रहा हो, तो उन आत्माओं से भी बाबा आपको दूर रखेंगे। इसलिए धन की सारी बातें बिना छोड़े, छोटे से छोटे खर्चे, और यदि आप कोई बांधेली माता हो और आपके घर में कोई और जैसे धन के डिसीशंस लेता हो, फिर भी आप गुप्त ही गुप्त अंदर ही अंदर ये योग बाबा के साथ करते चले रोज अमृत वेले में, और बाबा से रिक्वेस्ट करते चले कि आपके घर का धन पवित्र होते जाए और बाबा के मर्जी से चले। तो सिर्फ आपकी एक रिक्वेस्ट से बाबा पूरे परिवार को चला सकता है। बात यहाँ फिर से वही आती है जो हमने पूर्व के क्लासेस में भी कही है, परमात्मा से कर्म जोड़कर उन्हें अपना सब कुछ सौंप देना है, धन एस्पेशली जरूर सौंपना है। तो ये ट्रस्टी बनने की तीसरी विधि थी। इस बात को हमें कभी भूलना नहीं है, और छोटे से छोटे खर्चे भी बाबा को पूछकर या बताकर ही करना है। एक कोई भी चीज करने के पहले बाबा को लिस्ट दे दें या बताएं और कह दें कि बाबा जैसे आप चाहे वैसे ये ड्रामा चले। तो ये बात आप एक स्थाई या स्टैंडर्ड एक आप एक प्रिंसिपल बना लें, इसको आपका एक जीवन का मूल्य बना लें, ताकि आप कभी भी इससे विचलित न हो और कोई और आपके बुद्धि को धन के लिए इन्फ्लुएंस न करे। तो सारी बिजनेस की बातें, घर की बातें, खर्चे, बच्चों के प्रति करने वाले खर्चे, दूसरे लोगों को कोई लेन देन की बात हो, किसी के बीमारी पानी पे खर्चे होने वाले पैसे, हर बात बाबा को पहले बताएं और बाबा को कह दें कि आप जैसे चाहो वैसे मेरे धन को चलाएं। तो ये तीसरी बात थी ट्रस्टी बनने की। और चौथी मुख्य बात जो हम कहना चाहते हैं वो है बच्चों के विषय में। लौकिक जीवन में कई बार ऐसे होता है कि माता पिता ब्राह्मण जीवन फॉलो कर रहे होते पर बच्चे मानते नहीं हैं या बच्चे चाहते नहीं हैं। वह आजकल की जो दुनिया है उस हिसाब से रहना चाहते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि बच्चे कुछ विपरीत भी होते हैं, उन्हें पसंद नहीं आती है आपकी बातें, पर फिर भी हम बाबा के बच्चे हैं, तो हमें ये, और यदि हम कई सालों से ज्ञान योग में चल रहे हैं, कोई ना कोई तरीके के बाबा की प्योरिटी के डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, कुछ न कुछ हम अमृत वेला भोग ये सब बातें फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे घर में अधिकतर जो भी बच्चे आते हैं या जो आने वाले होंगे वो कहीं ना कहीं यज्ञ की ही आत्माएं, ये हमने देखा है बहुत बार, वापस आती हैं, क्योंकि उन्हें भी ऐसे शुद्ध पवित्र घर चाहिए रहते हैं जहां बाबा का वास हो। तो पहले उनके लौकिक, बच्चों के लौकिक रूप को नहीं देखें, ये वृत्ति हमेशा अंदर रखें कि ये भी एक देव आत्मा है, ये भी जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे पास इसलिए आए हैं क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक देव आत्मा है और वो नई दुनिया के ही वंशज हैं। ये वृत्ति रखें, भले ही बच्चे का रोल कैसा भी हो, बाहर से बच्चा शायद आजकल के लौकिक बच्चों की तरह रह रहा हो, या तो उसे रिस्पेक्ट करें, उसे रहने दें वो जैसा चाहता है, क्योंकि यदि आप जोर जबरदस्ती से कोई काम करोगे तो बच्चा बाबा से दूर जा सकता है और इससे बाबा की डिससर्विस होगी और एक आत्मा हमेशा के लिए बाबा से दूर चला जाएगा। तो ये काम हमें नहीं करना है, मोहवश उनको बहुत दबा के डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए, या कोई भी ऐसी बात हमें नहीं करनी जिससे कि बच्चा अंदर से बाबा से दूर चला जाए। तो बच्चों के रोल को समझें, उनकी रोल भले ही बाहर की दुनिया वालों जैसी हो, बाहर के बच्चों जैसी हो, फिर भी आपको अंदर ये समझ रखनी है कि ये बच्चा कहीं ना कहीं एक देव आत्मा है, या हो सकता है कि कोई एडवांस्ड की आत्मा भी आपके घर पे आई हो, पर वह अभी गुप्त रोल प्ले करने आई हो, वो आपको पता नहीं है। वो बाबा और उस आत्मा के बीच का हिसाब है, पर बाबा ने आपको वो बच्चा सौंपा इसलिए है क्योंकि बाबा चाहता है कि आप उसकी पालना सही तरीके से करें। तो घर में अन्न का, बाबा का भोग लगाने का कोई ना कोई तरीका अपना कर वो उतना अन्न वो आत्मा को खिला दें, जाने अनजाने कैसे भी खिला दें, पर साथ साथ में उनका जो रोल है, लौकिक रोल है अपने दोस्तों के साथ जाने का या जो भी है, उसे रिस्पेक्ट करें, उनकी बातों को समझें, वो क्या चाहते हैं। क्योंकि हमारे घर में कई बच्चे हमने देखे हैं यज्ञ में आने के बाद भी उनके थॉट्स और उनमें होशियारी जो भी है, एक स्पिरिचुअल दुनिया की तरह से अलग उनकी बोल किस्म रहते हैं। तो ये अपना भाग्य समझें कि हम जानते नहीं बाबा ने कोई एडवांस की आत्मा हमारे यहाँ भेजी है। तो हमेशा यदि हमारी वृत्ति एक रहेगी कि हमें अपने बच्चों को रिस्पेक्ट से बात करके समझना, चाहे उनका लौकिक रोल कोई भी हो, कभी भी हमें मोहवश उन पे कुछ थोपना नहीं है, न ही ऐसा कुछ करना है कि आत्मा बाबा से दूर जाए। बाबा का परिचय उन्हें जरूर दें और कहें कि बाबा को याद करने से आपकी चीजें आसान हो सकती है, पर कोई भी चीज उन पर थोपे नहीं। जैसे कोई पतंग उड़ाते हो वैसे बच्चों की पालना करें, कहाँ जहाँ जोर रखना है वहाँ जोर रखें, जहाँ ढीला छोड़ना है वहाँ ढीला छोड़ें। तो ये बात लौकिक में बहुत बड़ा बहुत सारे प्रॉब्लम्स का कारण बन जाती है। और ये कारण बनता क्यों है, क्योंकि माताएं स्पेशली और भाई भी दोनों भी यदि वृत्ति यदि आप बच्चे पर उसे आप ब्राह्मण कन्वर्ट करने की वृत्ति अगर रखेंगे तो घर में कई बार झगड़े का कारण बन जाते। तो इसलिए समझ से काम दें, और यदि बहुत कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है बच्चे को लेकर तो बाबा के साथ, जैसे पहले भी कहा है, पहले बाबा से चर्चा करें, अमृत वेले बाबा को सौंप दे बातें और फिर बाद में बच्चों के प्रति डिसीशन लें। तो बच्चों को रिस्पेक्ट से उनके रोल को समझते हुए और ऐसा व्यवहार करें ताकि वो रोल जो भी प्ले करें पर बाबा से दूर नहीं जाए। लौकिक में उनका कोई भी रोल हो, कैसे भी वो कपड़े पहने या जैसे भी रहें, उसको रिस्पेक्ट करें, पर वो बाबा से दूर जाए नहीं, ऐसी आपकी पालना होनी चाहिए। ये है चौथी बात। और लास्ट बात जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि जो भी आपके साथ बहुत सालों से कोई आत्माएं चल रही है, जो न ज्ञान में आती हैं न आपकी बातें सुनती हैं पर फिर भी आपसे संबंध रखना चाहती है, और उनकी वजह से कई बार आपके घर में कुछ कलह क्लेश होता है, तो ट्रस्टी बनने के लिए मुख्य बात ये है कि ये जो दो विषय मैंने पहले कहा, बच्चों को लेकर और ये जो आत्माएं स्थाई आत्माएं जो आपके जीवन में हैं, जो इन दोनों के लिए भी आप एक युक्ति अपना सकते हैं, वो है कि अमृत वेले अपने बच्चों को भी और जो भी ऐसे कड़े संस्कार वाले आत्माएं हैं जो आपकी बात मानती नहीं है या आपका जीवन आपके जीवन में दुविधा लाती हैं, उन्हें बाबा के सामने इमर्ज करें और उन्हें दृष्टि दें, रोज उन्हें दृष्टि दें। बच्चों को भी बाबा के सामने इमर्ज करें, इसमें मोह की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ डिटैच्ड होकर एक काम कर रहे हैं कि उन आत्माओं के सामने ऊपर बाबा का लाइट डाल रहे हैं, बस यही काम आपको करना है। तो इसमें मोह की कोई बात नहीं, क्योंकि यदि ये आत्माएं धीरे धीरे आपकी बात को समझते जाए या मानते जाए या आप उनके हिसाब से चलना सीखें तो एक शांति बनी रहती है और घर का माहौल जो है, जो संकल्पों से कभी कभी लोग चुप रहते हैं पर संकल्प इतने बुरे या गुस्से वाले होते तो घर का वातावरण बिगड़ जाता है। तो ये हमें याद रखना है कि हमारा घर बाबा का ब्रिज है, यहाँ से ही चलकर कई आत्माएं बाबा के पास आएंगी, इसलिए हमेशा रोज जो भी विपरीत आत्माएं हैं या अपने बच्चे भी जो हैं, उनको सवेरे अमृत वेले में उनको दृष्टि दे उन आत्माओं को। और दृष्टि देने की विधि कैसी है? विधि यह है कि पहले शिव बाबा को विजुअलाइज करें, फिर अपने आप को विजुअलाइज करें और बाबा से रेज जो किरणें हैं वो आपकी आत्मा पर और उन आत्माओं पर गिर रहे हैं, ऐसा एक विजुअलाइजेशन आप योग में क्रिएट करें और उनको दृष्टि दे। जैसे लौकिक में भी आप कोई काम से अगर खाली हो, थोड़ा सा वक्त मिले, तो बीच बीच में दिन में जब भी टाइम मिले इन आत्माओं को दृष्टि दे, जस्ट बाबा के सामने इमर्ज करें और उन्हें दृष्टि दे। जैसे दादी या कोई दृष्टि देते, बाबा दृष्टि देते हैं, वैसे दृष्टि दे। तो दृष्टि देते, कोई संकल्प नहीं करें इनके प्रति, क्योंकि कभी कभी संकल्प विकल्प के खेल में बहुत सारा वातावरण जैसे माहौल दूषित हो जाता है। तो कोई भी संकल्प नहीं करे, पर उन्हें सिर्फ बाबा के लाइट के सामने दृष्टि दे मन ही मन। और इससे कई आपके जो कड़े संस्कार वाले कोई आत्माएं हैं या बच्चे भी अगर बहुत कर्म कोई आपसे विपरीत कर रहे हैं, ये कट जाएगी। तो ये ट्रस्टी बनने की ये लास्ट पॉइंट थी कि जो भी कड़े संस्कारों वाले लोग हैं उनको आप बाबा के सामने दृष्टि दें। तो हमने 5 पॉइंट्स के बारे में बात की। पहले है मेहमान बनना, दूसरा था आध्यात्म जीवन और लौकिक जीवन को एक करना और ट्रस्टी की तरह संभालना। तीसरी पॉइंट थी धन के बारे में कि धन सारा बाबा को सरेंडर करना। चौथी पॉइंट थी बच्चों के लिए कि उनके रोल को एक्सेप्ट करके वह जैसा भी रोल प्ले करें उसे समझकर या उसे बाबा पे सुपुर्द करके आप अंदर ही अंदर कोशिश करें कि वह बाबा के सान्निध्य में रहे या बाबा से दूर नहीं जाए, रोल चाहे कोई भी प्ले कर रहे हो। और लास्ट पॉइंट थी कि जो भी कड़े संस्कारों वाली आत्माएं हैं तो ट्रस्टी बनकर उन आत्माओं को बाबा के सामने इमर्ज करके उन्हें दृष्टि दें। तो ये ट्रस्टी बनने की विधि, इसके बारे में आज हमने बात की। आगे चलकर ऐसी ही कोई और बाबा जो भी टच करवाएं वैसे पॉइंट्स हम आपके सामने लाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। ओम शांति।